नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक विरोधी प्याज पर लगाए गए निर्यात शुल्क को लेकर गलत तस्वीर पेश कर रहे हैं। उन्होंने किसानों से चिंता न करने का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार ने बफर स्टॉक के लिए 2410 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्याज की खरीद फिर शुरू कर दी है। सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 19 अगस्त को प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया था। ये निर्यात शुल्क 31 दिसंबर 2023 तक प्याज पर जारी रहेगा। इसके साथ ही केंद्र ने किसानों से 2,00,000 टन अतिरिक्त प्याज खरीदने का भी फैसला किया। उन्होंने कहा कि सरकार बफर स्टॉक का आकार बढ़ाएगी और जरूरत पड़ने पर किसानों से अधिक खरीद करेगी। वाणिज्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से कहा कि प्याज पर निर्यात शुल्क लगाने के साथ ही सरकार ने बफर स्टॉक के लिए किसानों से अतिरिक्त 2,00,000 टन प्याज खरीदने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को देश का पहला दुर्घटना परीक्षण कार्यक्रम भारत NCAP पेश किया। इसका मकसद 3.5 टन तक के मोटर वाहनों के सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार करना है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि यह ऑटोमोबाइल उद्योग और समाज के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इससे वाहनों की सुरक्षा सुविधाओं में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि भारत NCAP तंत्र को सभी हितधारकों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया है। गडकरी ने कहा कि देश दो चुनौतियों, सड़क दुर्घटना और वायु प्रदूषण का सामना कर रहा है। भारत में हर साल करीब 5,00,000 दुर्घटनाएं होती हैं और इन दुर्घटनाओं के करीब 1.5 लाख लोगों की जान जाती है। जर्मनी की लग्जरी स्पोर्ट्स कार निर्माता कंपनी पोर्श एजी को भरोसा है कि 2030 तक भारत में उसकी कुल बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी करीब 80% होगी। कंपनी अगले साल की शुरुआत में ऐसे 3 नए वाहन पेश करने की योजना बना रही है। पोर्श एजी के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य बिक्री एवं विपणन डेट लेव वॉन पेल्टन ने पीटीआई भाषा से साक्षात्कार में कहा कि कंपनी युवा ग्राहकों, स्टार्टअप उद्यमियों और महिलाओं को लक्षित कर रही है, क्योंकि वह भारत में ब्रांड की उपस्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। कंपनी अभी 88 लाख रुपए से 4.26 करोड़ रुपए के बीच की कई लग्जरी स्पोर्ट्स कार और SUV बेचती है। हालांकि पोर्श के आने वाले कुछ समय तक भारत में स्थानीय स्तर पर अपने वाहनों को असेंबल करने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि वह भी भारत में ब्रांड को स्थापित करने तथा मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा, हमने घोषणा की है कि हम 2030 तक शुद्ध कार्बन तटस्थ होना चाहते हैं। 2025 तक हमारी 50% कारें इलेक्ट्रिक होंगी और 2030 तक हमें उम्मीद है कि हमारी करीब 80% कारें पूरी तरह से बिजली चालित होंगी। SBI फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि उसने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की बंद हो चुकी 6 ऋण योजनाओं में परिसंपत्तियों का परिसमापन कर दिया है और यूनिट धारकों को 27,508 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अप्रैल 2020 में अपने 6 बॉन्ड म्यूचुअल फंड योजनाओं को बाजार में तरलता के अभाव में बंद करने की घोषणा कर दी थी। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2021 में SBI फंड्स मैनेजमेंट को इन बंद योजनाओं की परिसंपत्तियों का निपटारा करने और भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। रियल एस्टेट कंपनी ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने फाइजर हेल्थकेयर इंडिया से चेन्नई में 6.54 एकड़ जमीन खरीदी। इस जमीन का सौदा 139 करोड़ रुपए में हुआ। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज की योजना इस जमीन पर एक आवासीय परियोजना विकसित करने की है। कंपनी ने राजीव गांधी सलाई में स्थित 6.54 एकड़ भूखंड के अधिग्रहण के लिए सोमवार को एक सौदा किया। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ने इस बारे में मंगलवार को शेयर बाजार को जानकारी दी। कंपनी ने कहा कि वह जमीन के टुकड़े पर एक आवासीय परियोजना का विकास करेगी। इस परियोजना में 1,00,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र विकास किया जाएगा। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देब रॉय ने मंगलवार को कहा कि सरकार को GST के कारण राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसे एकल दर के साथ राजस्व तटस्थ तो होना चाहिए। उद्योग मंडल कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि GST से ये चीजें काफी सुगम है। देब रॉय ने कहा, आदर्श GST वह है जिसमे एक ही दर और उसका उद्देश्य राजस्व तटस्थ होना था। वित्त मंत्रालय की गणना के अनुसार जब GST पहली बार लागू किया गया था तो औसत दर कम से कम 17% होनी चाहिए थी, लेकिन मौजूदा 11.4% है। दिल्ली की एक अदालत ने छत्तीसगढ़ में एक कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित कोयला घोटाला मामले में इस्पात मंत्रालय के एक पूर्व अधिकारी को मंगलवार को 3 साल की जेल की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने इस्पात मंत्रालय के JPC के पूर्व कार्यकारी सचिव गौतम कुमार बसाक को विजय सेंट्रल कोल ब्लॉक के आवंटन में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के अनुसार जनवरी 2007 में कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन करने वाली प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर आरोप लगाया गया था कि उसने अपनी क्षमता के बारे में गलत जानकारी दी। मंत्रालय ने बसाक को आरोप की सच्चाई का पता लगाने का निर्देश दिया था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।